أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 سے سٹارٹ کریں گے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی اس کے رب نے اسے کہا کہ جھک جا، اس نے کہا میں جھک گیا تمام جہانوں کے رب کے آگے. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے ہیں کہ ابراہیم نے نہ صرف خود یہ طریقہ اختیار کیا، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یعنی اسماعیل اور اسحاق علیہما السلام کو بھی یہی وصیت کی تھی، یعنی اسی دین اسی طریقے پہ چلنے کی وصیت. پھر حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو آگے سے یہی وصیت کی. یہاں خاص طور پہ حضرت یعقوب یعنی حضرت اسرائیل کا ذکر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہودی خود کو انہی کی نسل کہتے تھے. تو ان انبیاء نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے. دین کا مطلب طرز حیات، لائف سٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ، مذہب، شریعت، طرز عمل اور طرز فکر. اور وہ دین کیا تھا؟ اسلام، یعنی سبمیشن کا دین، اور خود کو اللہ کے آگے جھکا دینے کا طریقہ، اللہ کی خاطر قربانی دینے والا لائف سٹائل. اللہ نے تمہارے لیے یہی دین چنا ہے، اس لیے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یعنی اپنی آخری سانس تک اس دین کو قائم رکھنا، سبمیشن، اطاعت اور فرما برداری کی زندگی بھی گزارنا اور اسی حالت میں مرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مسلمان کہا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ یہودی اور عیسائی سمجھتے تھے کہ ان کا طریقہ، دین اور مذہب مسلمانوں سے بالکل الگ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تمام انبیاء اور رسولوں کو ایک ہی دین کے ساتھ بھیجا. ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے. یعنی انسانوں کے لیے ہمیشہ سے زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی اور عبودیت کی زندگی گزاریں. حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ایکسپیکٹیشن ہے انسانیت سے کہ وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کریں اور اللہ کی عبودیت اور فرما برداری کی زندگی گزارے. یہی ایکسپیکٹیشن حضرت آدم علیہ السلام سے بھی تھی جب انہیں درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا، اور یہی ایکسپیکٹیشن آج تک ہم سے بھی ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ہم ان سے رک جائیں، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائیں. یہی اسلام ہے، سبمیشن اور فرما برداری. قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. آپ دیکھیں کہ مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر ان کی اولاد تھی، اولاد کی امامت کی فکر، اولاد کا رزق. پھر دعا فرمائی کہ ان میں ایک رسول بھیج جو ان کی تربیت کرے، ان کا تزکیہ اور تعلیم کرے. اور اب مرتے وقت بھی حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو یہی وصیت کی کہ اسی دین پہ مرتے وقت تک قائم رہنا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. پھر اللہ تعالیٰ آیہ نمبر 133 میں فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان آیات میں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، یعنی دادا اور پوتا. یعنی جو وصیت حضرت ابراہیم نے مرتے وقت اپنی اولاد کو کی، پوتے نے بھی ایگزیکٹ وہی وصیت مرتے وقت اپنی اولاد کو کی. ایک نسل سے دوسری نسل میں ایک ہی لیگسی چلی آ رہی ہے، توحید کی، اسلام کی اور سبمیشن کی. ہر شخص اپنی موت کے وقت اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتا ہے، یہ ایک نیچرل سی بات ہے. لیکن زیادہ تر ہماری سوچیں دنیا کے بارے میں ہوتی ہیں، میری چوڑیاں فلاں کو دے دینا، میرے کڑے اس کو دے دینا، بینک بیلنس کا کیا ہوگا. لیکن انبیاء اور رسولوں کی فکر موت کے وقت مختلف ہوا کرتی تھی. मा ताबुदून अमिन बादी, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? ये किस कदर इम्पॉर्टेंट और अहम सवाल है। हम अपनी औलाद को वसीयत करते हुए भूल जाते हैं कि असल खैर जो हम अपनी औलाद के लिए छोड़ सकते हैं वो मालो दौलत नहीं है, वो लेगेसी है अबूदियत और इस्लाम की, कि हमारे मरने के बाद वो अल्लाह की बंदगी और इबादत करने वाले बने, वो अल्लाह के ताबेदार हों, वो मरते दम तक अल्लाह के मुती फरमान रहें। क्योंकि जो शख्स अल्लाह का ताबेदार होगा उसे अल्लाह ताला खुद दुनिया और आखरत की खैर अता फरमा देंगे, उसे अल्लाह की माईयत और अल्लाह का साथ मिल जाएगा। जो अल्लाह की राह पे चलने वाले होते हैं उनकी दुनिया और आखरत फिर अल्लाह के ज़िम्मे होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमें पेरेंटिंग के तीन अहम असूल सीखने को मिलते हैं। पहला तो अपनी औलाद की बहुत अच्छी तालीम व तरबियत करना। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरबियत ही थी कि आपने खाना काबा की तामीर में हज़रत इस्माईल को भी अपने साथ लगाया, यानी औलाद को नेक कामों में शामिल करना। फिर औलाद से मशवरा लेना, उनके ओपिनियन को इज़्ज़त देना। जब हज़रत इब्राहीम ने कहा, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तो बताओ इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? ये वालिद की बेहतरीन तरबियत का नतीजा था कि हज़रत इस्माईल ने फ़ौरन कहा कि ऐ मेरे अबू, आप कर गुज़रिए जिसका आपको हुक्म हो रहा है। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। दूसरी चीज़ जो हम हज़रत इब्राहीम से पेरेंटिंग के बारे में सीखते हैं वो ये है कि औलाद के लिए मुसलसल दुआ करना। रब्बी जअलनी मुकीमुस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी आने वाली नस्लों को नमाज कायम करने वाला बना। फिर रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक अहलहु मिनस्समरात, दुनिया में भी अपने बच्चों की सिक्योरिटी, उनके अमन अमान और उनके हलाल और बेहतरीन रिस्क की दुआएं करना। फिर उनके लिए दीन पे इस्तकामत की दुआएं की। वजनुबनी व बनी अन्ना अबुदल असनाम, कि ए अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से पनाह दे। फिर आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा जअल अफ़िदतम मिनन नासि तहवी अलैहिम, ए अल्लाह लोगों के दिल मेरी औलाद की तरफ माइल कर दे, उनके दिलों में मेरी औलाद के लिए मोहब्बत पैदा कर दे। ये सब खूबसूरत दुआएं हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही मिलती हैं। और फिर तीसरी बात ये कि मरते वक्त इंसान की सबसे बड़ी सोच ये होनी चाहिए कि मेरी औलाद मेरे बाद दीन इस्लाम पे कायम रहे। मा ताबुदूना मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? औलाद को बकायदा वसीयत की जाए कि अल्लाह की फरमा बरदार रहना और मरते दम तक इस रास्ते पर कायम रहना। दरअसल हमारे बच्चे सिर्फ हमारे बच्चे ही नहीं हैं बल्कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली नस्ल हैं। इस उम्मत का फ्यूचर हमारे घरों में पल रहा है। अगर हम में से हर कोई ये डिसाइड कर ले कि हमने औलाद की दीन के मुताबिक तरबियत करनी है, उन्हें किताब का इल्म और सुन्नत की हिकमत सिखानी है और उन्हें मरते वक्त यही वसीयत करनी है कि वो तौहीद पर कायम रहें, तो हम कुछ ही अरसे में एक मजबूत उम्मत बन जाएंगे। यही तरीका था अंबियाए कराम का। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कुरान में हमें बार बार देखने को मिलती है वो ये है कि अल्लाह ताला ने औलाद की दीनी तरबियत की जिम्मेदारी बाप को दी है। मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि मैं खुद माँ हूँ और इस जिम्मेदारी से मैं जान छुड़वाना चाह रही हूँ, बल्कि आप खुद नोटिस करें कि कुरान में बार बार एक ही थीम नज़र आता है। हज़रत लुकमान अपने बेटे को दीन के बारे में नसीहत करते हैं, हज़रत याकूब अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ की तरबियत करते नज़र आते हैं, फिर हज़रत इब्राहीम अपने बेटों की दीन के लिए मुसलसल परेशान नज़र आते हैं। इससे ये पता चलता है कि औलाद की, ख़ास तौर पर बेटों की दीनी तरबियत बेसिकली बाप की ज़िम्मेदारी है, लेकिन माएँ भी औलाद की तरबियत में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। जब हज़रत याकूब ने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, तो उनके बेटों ने क्या कहा? قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، उन्होंने कहा, हम बंदगी करेंगे आपके माबूद की और आपके आबाओ अजदाद इब्राहीम इस्माईल और इसहाक के माबूद की, वही एक माबूद है और हम सब उसी के मुती फरमान हैं। ये यहूदी और मुशरिकीन मक्का दोनों ही को बताया जा रहा है कि इसहाक और इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों का दीन इस्लाम ही था। वो दोनों इब्राहीम ही की औलाद थे जिनकी परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छी की थी। एक नस्ल से दूसरी नस्ल को वसीयत की और इस्लाम मुंतकिल होता रहा। ये ख़ास पेरेंटिंग के ऊपर आयात हैं, ख़ास तौर पर इस्लामिक पेरेंटिंग के ऊपर, कि नस्लों में ख़राबियाँ तब पैदा होना शुरू होती हैं जब माँ बाप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना छोड़ दें, औलाद की तालीम व तरबियत में कमी रह जाए और माँ बाप औलाद को दीन के असूल वसीयत करना भूल जाएं, तभी आने वाली नस्लें कंफ्यूज हो जाती हैं और दीन में तरह तरह के तरीके, बिदात और शिर्क शुरू हो जाते हैं। जब तक हज़रत इब्राहिम से हज़रत इस्माइल और इसहाक, हज़रत इसहाक से हज़रत याकूब, फिर हज़रत याकूब से उनकी औलाद को अल्लाह का दीन वसीयत में मिलता रहा, तब तक इस्लाम और तौहीद का सिलसिला चलता रहा। ये बाद की नस्लों में वालिदैन ने अपना काम करना छोड़ दिया, कहीं ना कहीं ये जंजीर टूट गई, इसीलिए खराबी पैदा हुई। फिर आया नंबर 134 में अल्लाह सुबहानहु व तआला फरमाते हैं, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। ये एक जमात थी जो गुजर चुकी, उनके लिए था जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए होगा जो तुम कमाओगे। तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। कसबा के लफ्ज़ का मतलब कमाई, ऐसा काम जो इंसान किसी किस्म का नफ़ा और फ़ायदा उठाने के लिए करे। लोग सुबह अपने घर से निकलते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी, कोई बिजनेस, सबका मकसद कसबुल माल होता है, यानी अपने और अपने प्यारों के लिए पैसा कमाने की जद्दोजहद करना। फिर जब शाम को बंदा घर जाता है तो जिसकी जितनी कमाई होती है उसी के लिहाज से उसका लाइफस्टाइल होता है, उसका खाना पीना, उसका पहनना ओढ़ना होता है। अल्लाह ताला कुरान में यही लफ्ज़ नेक आमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंसान दरअसल दुनिया में कमाई करने आया है, जद्दोजहद करने आया है। जिसकी जितनी मेहनत होगी, जिसकी जितनी कोशिश होगी, उसके लिहाज से उसकी कमाई होगी। और जैसे बंदा शाम को वापस घर जाता है, वैसे ही बंदा मरने के बाद अपने असल घर वापस जाता है। शायर ने इसीलिए कहा है, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो फिर जब बंदा अपनी असल कमाई लेकर अल्लाह के पास जाता है, उस वक्त उसकी कमाई के लिहाज से उसका लाइफस्टाइल उसे मिलेगा। जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा होगी उसे अल-फ़िरदौसुल आला में जगह मिल जाएगी, जिनकी कम होगी उन्हें अपनी अपनी कमाई के लिहाज से जन्नत में दर्जा मिलेगा। और हर लेवल पे उस दर्जे के लिहाज से इंसान का लाइफस्टाइल होगा। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा आमिलू, और लोगों ने जैसे काम किए होंगे उसी के मुताबिक सबके दर्जे होंगे। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, यानी तुम्हारे आबाओ अजदाद एक उम्मत थे जो गुजर गए, उनके क्या ईमान थे, उनके क्या आमाल थे, वो जैसी औलादों की तरबियत कर गए, वो जैसे अपनी अगली नस्लों में अपनी वसीयतें छोड़ गए, वो सब उनकी कमाई थी। उनका सवाब सिर्फ उनके लिए है और तुम्हें सिर्फ उसका अजर मिलेगा जो तुम करोगे। अगर मुशरिकीन मक्का बुत परस्ती में पड़े हुए हैं तो वो इसलिए नहीं बच सकते कि वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है। यहूदी रसूलों का इनकार करके इसलिए नहीं बच सकते कि वो हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब की औलाद है। कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जिसमें किनशिप पे सीटें मिलती हैं, कि इस बच्चे के वालदैन भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, तो अगर इसके नंबर कम भी हैं तो इसको दाखिला दे दो। जन्नत में कोई किनशिप की सीटें नहीं हैं, हर किसी को अपना मेरिट लेकर आना पड़ेगा। दुनिया में इस तरह के कई फ़ायदे मिल जाते हैं कि ये शख्स फलां का बेटा है। अक्सर आप देखें कि आर्मी के इंटरव्यूज़ में वो पूछते हैं कि आपके वालिद आर्मी में थे, उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उन्होंने कितने साल आर्मी को सर्व किया या वो किस पोजीशन पर रिटायर हुए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़े आखरत तुम्हारे इंटरव्यू में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा कि तुम्हारे आबाओ अजदाद ने क्या किया, ना ही इसके कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।